हरे कृष्णा। इनका प्रश्न ये है कि वो दशहरे के दिन वो पत्ते जो होते ना आपटेची पाना समीचे वृक्षाचे पाना वो क्यों बांटते हैं? क्योंकि पांडव लोगों को जूत क्रीड़ा में जुआ में हारने के बाद में वनवास हो गया था। और कैसा वनवास हो गया था? 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, मतलब मालूम नहीं होना चाहिए किधर हो आप। तो 12 साल हो गए तो 13th ईयर में वो लोग विराट राजा की नगरी में गए और द्रौपदी बनी नौकरानी, भीम बना आचारी मतलब खाना बनाने वाला, नकुल बना घोड़े देखने वाला और अर्जुन बना नपुसक नृत्य सिखाने वाला। ऐसे करके उन्होंने अपना रूप बदल करके छुप गए वो सब। अभी एक बात और है, उनके पास गांडीव धनुष था अर्जुन का, गदा थी भीमसेन की, हाँ ऐसे बड़े बड़े शस्त्र थे उनके। और वो शस्त्र थे ना वो इतने पावरफुल थे कि देखने से ऐसा लाइट आती थी शस्त्र से, प्रकाशमान इतना, यहाँ रखेगा ना तो पूरा हॉल लाइट से भर जाएगा, इतना पावर था। अभी मैं तो छुप गया लेकिन मेरी गदा ओपन रहेगी तो लोग बोलेंगे हाँ इधर ही होगा भीम की तरफ भी। धनुष देखेगा अरे ये तो गांडीव धनुष है, मतलब अर्जुन कहीं इधर ही होगा, पकड़े जाएंगे ना। तो शस्त्र को भी उन्होंने बांध के उसका प्रकाश सब छुपा दिया उसको, और ये शमी के वृक्ष के अंदर ढोली में घुसा के रख दिया उसको। समझ में आपको आया? अभी भी गांव में जाएंगे ना तो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके अंदर इतना बड़ा बड़ा गड्ढा होता है अंदर, आप अंदर आके बैठ सकते हो, सो भी सकते हो। साधु मुनि लोग पुराने जमाने में पेड़ के अंदर जाके सोते थे, उधर भजन करते थे अपना। अभी भी वृंदावन में ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं। तो उन्होंने अपने सारे शस्त्र अस्त्र जो है ना, धनुष बाण गदा भाला ये वो जितने भी शस्त्र हैं वो सब बांध के उस पेड़ के अंदर छुपा लिए उन्होंने। सबसे पहले कब निकाले? जब विराट के यहाँ पर जब कर्ण ने और दुर्योधन ने आक्रमण किया और गाय को चुरा लिया। क्यों चुराया उन्होंने? क्योंकि विराट के राजा में सेनापति कीचक का किसी ने हाथ से ही वध कर दिया। वो सेनापति कीचक इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि दुनिया में केवल 2 व्यक्ति उसको मार सकते थे, एक भीमसेन एक दुर्योधन। तो उसका वध हो गया और क्या मालूम पड़ा, रात के अंधेरे में किसी ने मुक्के मार मार कर उसको खत्म कर दिया। तो न्यूज़ पहुंच गई दुर्योधन के पास, बोला मैंने तो नहीं मारा उसको, मतलब भीमसेन ने मारा होगा, मतलब विराट के नगरी में भीमसेन होगा, मतलब अगर उस राजा के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो ये लोग बाहर निकल के युद्ध करेंगे। तो क्षत्रिय है ना वो लोग, जिन्होंने 1 साल सहारा दिया है, उनकी गाय अगर चुरा लिया हम लोग ने तो बाहर निकलेंगे युद्ध करने के लिए, तब मैं उनको पकड़ लूंगा, देखो तुमको पकड़ लिया मैंने। तो ये प्लानिंग किया पूरा, क्या कहते हैं उसको, षड्यंत्र रचा उन्होंने, आक्रमण किया। और आक्रमण करके जब गाय लाखों की संख्या में चुरा के जा रहे वो लोग उस राज्य के अंदर, तो राज्य के अंदर हाथ राही राही मच गए, हमारा धन लुटा के लेके जा रहे हैं। तो ये 5 वीर बैठे हुए हैं घर पे, वो कैसे बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा ही छुपा के बैठा हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हमारा कर्तव्य, हमको 1 साल उन्होंने छुपा रखने को आसरा दिया है, हमारा कर्तव्य है। तो वो विराट राजा ने क्या किया, अपने राजपुत्र को बुलाया, उत्तर को बोला, उत्तर तुम्हें जाना है इनका सामना करने के लिए। अभी उत्तर एक बच्चा था उस समय, और युद्ध कौन कर रहे हैं, कर्ण दुर्योधन शकुनी भीष्मदेव द्रोणाचार्य सब लोग आक्रमण करके गाय चुरा रहे हैं। तो फिर उस समय नपुसक रूप में थे ना अर्जुन, उसका नाम था बृहन्नला, डांस सिखाने वाली टीचर थी वो। तो क्या बोलती है, अरे उत्तर मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं तुम्हारी सारथी बनूंगी, वैसे भी युद्ध करना है ना उसको भी, तो सारथी। बोले तू क्या औरत सारथी बनेगी? बोले कोई बात नहीं, मैंने बहुत पहले सारथी करना सीखा था अच्छी तरह से। तो फाइनली वो एग्री हो जाता है, और वो अर्जुन जो है औरत बना हुआ अर्जुन सारथी बन के उसका रथ लेकर जब जाता है ना युद्धभूमि में, तो वो भी भीष्मदेव द्रोणाचार्य कर्ण दुर्योधन को देखकर इतना घबरता है तो उधर से उठ के भागने लगता है वो। बोले मुझे नहीं युद्ध करना, मैं तो इनके सामने क्या टिक पाऊंगा, मुझे मार देंगे ये लोग। तो अर्जुन क्या करते मालूम है, अर्जुन भागते उसके पीछे, उसको उठाते हैं और बोलते तू भी सारथी बन, मैं भी रथी बनता हूं। तो अर्जुन उसको पकड़ के लेके आते हैं, बोले डरपोक आ जा इधर, अभी तू युद्ध करना भूल जा, मैं युद्ध करूंगी, मतलब करूंगा जो भी कुछ है। तो बोलते भाई सारथी बन, हाँ हाँ। तो डर डर के आता है सारथी बनता है, बोला रथ यहाँ लेके जा। तो बोले यहाँ क्यों लेके जा रहे हैं, युद्ध तो वहां होने वाला है। अरे पहले शस्त्र तो निकालूंगा मैं वहां से। तो वहां जाता है शमी के वृक्ष के पास, और फिर उतर के बृहन्नला जो अर्जुन है वो शस्त्र का जो पैकेज है ना पूरा निकाल दे, वो देख के उत्तर को चक्कर आती है, इतना पावरफुल शस्त्र के किसके है? तो बोलते ये जो धनुष है ना ये अर्जुन का है, ये जो गदा है ना ये भीमसेन की है, ये जो भाला है ना ये युधिष्ठिर महाराज का है। तो वो किधर है, इधर रखे हैं तो वो किधर है? बोलते ये लो मैं अर्जुन हूं। चल अभी बाद में बाकी के प्रश्न बाद में पूछना, बाकी के शस्त्र जो। और फिर अर्जुन जो है ना वो पेड़ के पास ही धनुष को उठाता है अपने हाथ से और उसका आवाज करता है टंतकार, उसका डोरी खींच के छोड़ता है तो उसकी आवाज आती है ना पूरे आकाश में गूंजती है। तो दुर्योधन बोलता है अच्छा हो गया, ये तो अर्जुन के गांडीव की ध्वनि है, मैंने तो पकड़ लिया उसको, अभी तो मैं पकड़ लूंगा उसको। बोला देखो अभी तुमको पकड़ लिया। तो गणित के हिसाब से 13वां साल खत्म हो गया होता है, उसके बाद में ये जानते हुए ही वो आवाज करता है और फिर सबके सामने प्रकट हो जाता है अनेक सूर्यों की तरह प्रकाशमान। अर्जुन जो है सावधान करके आह्वान करता है और सारे कौरव योद्धाओं को उस युद्ध में सम्मोहन अस्त्र डाल के बेहोश कर देता है। तो वो दिन उस पेड़ से जो निकाल दिया ना वो दशहरे का दिन था, इसलिए उस पेड़ को मानते हैं कि वो सोना बन गया, क्योंकि अर्जुन जैसे पांडव जैसे महान भक्तों का महान योद्धाओं के शस्त्र उन्होंने उस पेड़ ने संभाल के रखे थे। तो उसके पेड़ के प्रति जो ऋण है हमारा कि अरे पेड़ ने भी सहायता किया ना पांडवों को छुपाने में, उन्होंने भी सहायता किया, तो पेड़ को हम लोग प्रणाम करते हैं और उस पेड़ के पत्ते एक दूसरे को बांटते हैं उसकी याद में कि ये पेड़ ने भी ये सेवा किया था, वो उसका कारण है। शमी का वृक्ष का उसका सोना क्यों मानते हैं, उस दिन उसको सोना मानते हैं, स्वर्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। और युद्ध के निकलने के पहले जब वो निकल रहा था ना तो उसके तिलक बिलक किया जा रहा था, तो उसकी बहन है उत्तरा जिसकी शादी अभिमन्यु से होती है बाद में, है ना, तो वो उत्तरा कहते हैं भैया जब तुम जीतोगे ना तो सारे योद्धाओं का जो ऊपर का वस्त्र है ना मेरे लिए लेके आना, मैं मेरे गुड़िया गुड़ी के लिए वस्त्र बनाऊंगी उसके लिए। पुराने जमाने में जब युद्ध में कोई हारता था ना तो उसके ऊपर के वस्त्र छीन के लेके जाते, मैं कभी कभी पहनता हूँ ना मैं, वो सम्मान का प्रतीक है, उसको छीनना मतलब मेरा अपमान जैसा है। तो वो सारे योद्धा अपने वस्त्र पहन के आते हैं, जब युद्ध में हारते हैं ना तो उनके सब वस्त्र लेके जाते हैं वो दिखाने के लिए, देखो हमने ये अर्जुन का, ये दुर्योधन का वस्त्र है, ये भीष्मदेव का है, ये इसका है, देखो ये कर्ण का है, ये सबको परास्त करके मैं उसका वस्त्र छीन के लेके आया हूँ। तो उत्तरा क्या बोल रहे अपने भाई को, युद्ध में जीतोगे ना तो सबके वस्त्र लेके आना, हाँ मैं अपने गुड़िया के लिए उसके लिए डॉल के लिए कपड़े बनाऊंगी। अभी वो किधर, वो तो भाग रहा था, फिर सारथी बना, फिर अर्जुन ने युद्ध जीता तो अर्जुन ने याद दिलाया, अरे याद है ना बहन ने क्या कहा था, जा अभी उसके वस्त्र लेके आ। तो वो डर डर के सबके वस्त्र निकालता है, वो सब बेहोश हो गए लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि जग गए तो बाढ़ चलाएंगे तो मुझे आकाश में उड़ा देंगे। तो सबके वस्त्र लेता है और बाद में बोलता है देखो अब घर जाना है ना, किसी को बोलना नहीं कि मैंने युद्ध किया, सबको बोलना है कि तुमने युद्ध किया, सबको बोलना है तुमने सबको परास्त किया, सबको बोलना ये वस्त्र मैं लाया हूं, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो आप में वापस पोजीशन चेंज करते हैं, अर्जुन सारथी बनता है और उत्तर वापस अपने रथी पोजीशन में जाता है, सारे वस्त्र रथ में रखता है। जब पहुंचता है शंख बजाता है कि मैं विजयी होकर आ गया हूं, सब विराट नगरी के लोग आते हैं उनको फूल बरसाते हैं, मेरा बेटा उत्तर राजपुत्र उत्तर जो है विजयी होकर आया है, सब लोग एकदम जय जयकार करते हैं और बृहन्नला चुपचाप बैठे। बहन भाग भाग कहती है भैया तुमने लाया मेरे लिए वस्त्र, हाँ दीदी लाया हूँ, ये लो वो ये अर्जुन का, ये अपना ये कर्ण का है, ये भीष्मदेव का, ये द्रोण का है, ये दुर्योधन का है, ये शकुनी का है, लो गुड़ियों के लिए बनाओ अपने। मतलब इतनी सेवा करने के बाद भी अर्जुन ये नहीं बोलता है तुम क्या समझते हो इसने जीता, मैंने युद्ध किया है, ऐसा हम लोग बोलते ना इतना मेहनत करने के बाद में उसका श्रेय किसी को देना कितना डिफिकल्ट चीज है, लेकिन वो सेवा करने के भाव में थे, वो अपना नाम करने के लिए नहीं गए थे, सेवा किया पोजीशन चेंज किया सारथी बनकर आ गए। तो बाद में उसको उससे रहा नहीं जाता है, उत्तर से इतनी तारीफ हो रही है, इतना कैसे मारा, लोग पूछ रहे हैं अरे तुम भीष्मदेव को परास्त किया और तुमने अर्जुन को दुर्योधन को परास्त किया कैसे किया, तो कितना झूठ बोलेगा वो, है ना, मैंने ये अस्त्र चलाया फिर वो अस्त्र चलाया फिर ऐसे किया फिर वैसे किया, कितना झूठ बोलेगा। बाद में बोलते हैं नहीं 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 ये तो इन्होंने किया है, तो पिताजी बोलते हैं ये तो नपुंसक है ये क्या करेगा, तो डांस सिखाता है, क्योंकि उधर भीमसेन भी बल्लभाचार्य खड़े हैं वो भी सुन रहे हैं, सबको पता है किसने क्या किया है, उनको भी रहा नहीं जाता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सारा जो युद्ध है ना वो बृहन्नला ने किया था। तो ये सुनते ही विराट राजा को इतना गुस्सा आता है, क्या एक नाच सिखाने वाला नपुंसक तो उसने युद्ध किया है, मेरे पुत्र की तुम बदनामी कर रहे हो, अपमान कर रहे हो कि एक डांस वाले ने युद्ध करके जिताया और मेरा लड़का ऐसे खड़ा हो गया उधर, क्या समझते हो? ऐसा हाथ में वो चेस खेल रहे थे, चेस का ऐसा वो होता ना सोंगटी, वो निकाल के धर्मराज को ऐसा मार दिया मुंह पे, ऐसा मुंह पे लाके गिरा, धड़ाधड़ नाक से खून बहने लगा। उतने में द्रौपदी जो रानी की सेविका थी, अरे रुको जरा एक मिनट, दो मिनट रुको रुको। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, खून निकल आया, तो खून पट 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 गिरने लगा। तो रानी की जो सेविका है, द्रौपदी बनी हुई है, वो भाग के पात्र लेके आती है, क्यों? उसको पता है कि अर्जुन ने ये शपथ लिया हुआ है, अगर किसी ने मेरे भैया का खून निकाल कर जमीन पे गिराया तो मैं उसका वध कर दूंगा। इसका मतलब जिन्होंने एक साल आसरा दिया है उस विराट राजा का वध कर देगा वो, इसलिए वो तुरंत जाके पकड़ते, एक खून गिरने को देती नहीं है, और वो भी चुपचाप तुरंत सब वो पहुंच देता है कि भाई नहीं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए कुछ, इतना नम्रता है उनके अंदर। बोलो। तो उसके बाद में सबको पता चलता है कि अर्जुन थे नाचने वाले, और ये खाना बनाने वाले भीमसेन थे, वो घोड़ों को रखने वाले नकुल थे, और ये सहदेव थे, और ऐसे थे, वैसे सबको मालूम पड़ जाता है। फिर वो चरणों में गिर जाते हैं उनके। अरे, विराट की पत्नी बोलती है, तुमको मैं नौकरा नहीं बना दिया, बाल बनाओ, तेल लेके आओ, पाँव का मसाज करो, इधर करो, चेहरे में मेकअप लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, साड़ी पहनने में हेल्प करो, तुम तो महारानी है हस्तिनापुर की, और तुमने मेरी सविका का काम किया, माफ़ी चाहता हूँ। और फिर विराट राजा भाग भाग के आया, युधिष्ठिर के चरणों में गिर गया, तुमको मैंने कितनी बार गाली दिया, कंक के रूप में, कंक मतलब ऐसा असिस्टेंट टाइम पास करने वाला, तुम्हारे मुंह पे मैंने वो सौंटी मारा, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। सब लोग चरणों में गिर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और फिर वो दोबारा राजकुमारों का वस्त्र पहन के, राजा का वस्त्र पहन के फिर बाहर निकलते हैं। तब तक 13 साल पूरे हो जाते हैं, फिर आगे के महाभारत की कथा बढ़ती है। तो वो जो वृक्ष है जिसमें वो छुपा के रखा था, उसके पत्ते हम लोग बांटते हैं। तुमको याद करना चाहिए इस कथा को कि क्यों बांटते हैं उसको, पता ही नहीं हमको, तो क्या क्या मालूम, ना माँ ने बताया, ना पिताजी ने बताया, ना भाई ने बताया, ना नेबर ने बताया, बस कोई पत्ते निकाल के बांट रहे हैं, गले लग रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए क्यों है कर रहे हैं। और हमारा रिवाज कैसा है, पत्ते हम लोग लेते हैं और बड़ों को चरणों में रखते हैं और उनके चरण छूते हैं, साथ वालों को गले मिलते हैं और छोटों को आशीर्वाद देते हैं, ये हमारा संस्कार है, उनको करना चाहिए। अभी कोई करता ही नहीं, आजकल दारू पीते हैं, ताश खेलते हैं, बैठ जाते हैं, दशहरा है, छुट्टी है आज, लेकिन ये करना चाहिए, हमको बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारा कल्चर है, ये हमारा संस्कृति है, हमारा इतना इतिहास उसके पीछे है, हमको गर्व करना चाहिए उसके ऊपर। ये सब भूलकर हम लोग बाकी सब मोबाइल पे खेलते हैं, सब गेम चाहिए हमको, मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, फलाना चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, बीवी ऐसी चाहिए जो खाना बनाने में एक्सपर्ट हो और डिस्को करने में भी एक्सपर्ट हो, दोनों चाहिए उनको, है ना, सब में एक्सपर्ट चाहिए। हम लोग कुछ में एक्सपर्ट नहीं, लेकिन बीवी हर चीज़ में एक्सपर्ट चाहिए, एक छोटे कपड़े पहन के डांस करने में एक्सपर्ट होने चाहिए, और घर में 50 आइटम बनाने में भी एक्सपर्ट होने चाहिए। ये हमारा अभी कल्चर हो गया है, कितना दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को, परिवार को ये सब पता करना, उसके सिवा उसके अनुसार चलना, हमारे जीवन को धन्य करना हमारा कर्तव्य है। तो जानवर के बराबर है हम लोग, क्या अलग क्या हमारे अंदर, व्हाट इज डिफरेंस? बोलो श्री कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, नवरात्रि महोत्सव की, दशहरा महोत्सव की, दीपावली की, जय जय श्री राधे श्याम।